ये संतजनों, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 19 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए मंगलमय हो और आप सब भाग्यशाली हैं जो आपको श्री महाराज जी के वचनों का सुनने का, नित पान करने का सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी पुरानी स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट में खो जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं फिर से उसी समय में पहुँच जाती हूँ, वही मंदिर, वही छोटी सी कुटिया, वही स्वामी जी, वही मेरा जीवन, और मैं उसी अवस्था में पुनः चली जाती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसे तो शायद मैं भी बार बार नहीं पढ़ती उनके पसंद, लेकिन आपने मुझे एक सुंदर अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य दिया है। तो आज मैं एक और संस्मरण, जिसका हेडिंग है, विषय है अद्भुत योगी से मिलन। किसी भक्त ने उनको दिया है नाम स्वामी जी महाराज को अद्भुत योगी। देखिए, पहले तो मैं इसके विषय में बोलती हूँ कि योगी कौन होता है। योग शब्द से योगी बना। योग हम बचपन में पढ़ते हैं, योग जमा करना, 1+1=2, है ना, कि एक को जोड़ से एक जमा कर दिया तो वो दो बन जाती है। ऐसे ही जब जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो वो एक बन जाता है। लेकिन हम थे एक, लेकिन बिछुड़ने से हम बन गए दो। परमात्मा तो एक ही है, जो अणु से अणु है, से महत है, वो इतना बड़ा है कि उसका आकार इस यूनिवर्स में नहीं समा सकता। वो इतना छोटा है कि उसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। कई बार इतने छोटे पतले कीटाणु होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं ऐसे बैठी थी तो मैंने सामने देखा एक बादामी से रंग का, बादाम वाले रंग का पतला सा, बिल्कुल नाखून से भी कम उसकी लंबाई थी। पतला तो इतना था कि भाई उसको हाथ में नहीं लगा सकते, शायद मेरे बाल से के बाल जितना पतला था। तो मैंने देख रही थी, कुर्सी पर बैठी थी, सामने जमीन पर वो पड़ा था। मैंने किस क्या चीज पड़ी है ये, किसका किस कपड़े का वेशा पड़ा है। मैं थोड़ी सी झुकी, मेरे झुकने से वो जो मैं देख रही थी वो चल पड़ा, उसमें हरकत आ गई, वो लपक लपक के आगे चल पड़ा। ना उसकी टांगे है, ना कोई आंखें हैं, कुछ भी नहीं है, बस लाइक धागे की तरह, लेकिन वो चल पड़ा। जब वो चला तो मुझे सीर हुई, मैंने कहा वो देखो ये तो आत्मा की शक्ति है इसमें। योगी लोग कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि वो तो अणु से भी अणु है, जो इन आंखों से नहीं देखा जाता, जिसके लिए दूरबीन भी काफी नहीं है। तो देखिए कि भगवान कितने छोटे से छोटे में भी है, बड़े से बड़े में भी है, लेकिन उस भगवान तक पहुंचना, उससे मिलन करना, वो योग कहलाता है। एक भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, इस तरह से डिफरेंट अलग अलग भिन्न भिन्न के योग हैं, भिन्न भिन्न किस्म के योग हैं जो हमें भगवान से मिलाते हैं। कोई मनुष्य भक्ति करके भगवान से मिलता है, और भक्ति का मतलब है प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, जैसे हम अपने बच्चों से करते हैं, अपनी पत्नी से करते हैं, माता पिता से करते हैं, उससे भी कई गुणा अधिक प्यार करें तो भगवान मिलते हैं। कहते हैं कामनी प्यारी नारी जीवनी, जिस प्रकार कामी पुरुष को नारी प्यारी होती है, उसी प्रकार हे भगवान तो मुझे प्रिय लगना। मतलब हमें अधिक से अधिक प्रेम जो है वो भगवान से करना है, वही भक्ति योग। और दूसरा योग क्या है, कर्म योग। ऐसा कर्म करना है जिसमें हमें कहीं कुछ लेने की इच्छा ही ना हो, देने की हो, सेवा की हो, जिसके लिए हम मर मिटे, वो कर्म योग हो गया। ज्ञान योग हो गया कि मैं और मेरा परमात्मा एक ही है, हम दो नहीं है, बिछड़े हुए हैं, लेकिन योग से हम पुनः एक हो जाएंगे। इस तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से हम भगवान से अपना मिलन करते हैं। तो अब बात आई अद्भुत योगी से मिलन। एक अद्भुत योगी जो सन 1964 के आसपास कुल्लू शहर में आए, जिसे कोई नहीं जानता है, जन्मे पांव है, एकमात्र चद्दर ओढ़े हुए हैं और बिल्कुल दुबले पतले हैं। उनके अगर पेट और छाती की हड्डियां देखें तो बिल्कुल एक एक गिन लो आज के योगी उनके आगे क्या है, रामदेव जी भी क्या है, उनकी एक पसली एक एक घंटी हम गिन सकते हैं। ऐसे एक अद्भुत योगी का शुभ आगमन कुल्लू शहर में हुआ और कुल्लू शहर में वो कुछ देर अखाड़ा बाजार में ही रहे और वहाँ से वो आजकल का जो वैष्णो देवी महादेवी तीर्थ है उस स्थान में गए। उसमें वो बिल्कुल निर्जन स्थान था, कोई नहीं रहता था और पहाड़ी नाला था। कहते हैं कि वहाँ डाकू छिपे रहते थे और जब कभी कोई मनाली और रायसेन से पैदल यात्री आता तो उसको लूट लेते थे। तो बहुत मुश्किल था वहाँ से, उन दिनों तो बसें भी नहीं चलती थी, बहुत पहले तो लोग पैदल ही आया जा करते थे और जो भेड़ चराने जाते हैं वो भी रास्ते में वहाँ रुकते थे। वहाँ केवल गुफाएं गुफाएं थी, ना कोई पेड़ था ना कोई झाड़ी थी, केवल पत्थर ही पत्थर थे। तो ऐसे स्थान में आए वो अद्भुत योगी और वहाँ बैठ गया और उन्होंने अपने योग द्वारा जो उनका योग भगवान से मिलन हो चुका था, कहते नर ही नारायण बन जाता है, है ना, तुम ही जाना तो तुम ही हो जाई। रामायण कहता है श्री राम के मानस में तुलसीदास लिखते हैं, तुम ही जाना तो तुम ही हो जाई। हे प्रभु, जब हम आपको जान लेते हैं तो हम भी आपकी तरह ही बन जाते हैं। और वेद भी कहते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो स्वयं भी ब्रह्म बन जाता है। तो वो योगी योग के द्वारा स्वयं ब्रह्म बन चुके हैं, वो ब्रह्म में है और ब्रह्म में होने के कारण उनके पास जो वो भगवत इच्छा से प्राणी मात्र की सेवा के लिए करना चाहते वे उनके पास अपने आप उनके सामने आ जाता था और यहीं से उन्होंने ये गुफा बनानी शुरू की और यहीं से उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा, ये नहीं कि बैठ गए जैसे हम लोग बैठ जाते हैं ये लाओ वो लाओ, ना ना, उन्होंने तो मक्की के दाने भून भून के खाए और घास पात खा करके उस पथेले पुराने नाले में जिसका नाम जोगी नाला है तो उसमें ये मंदिर बनाना अपने हाथों से आरंभ किया था। तो उनके एक भक्त हुए श्री विजयलाल विजय कुमार सूद, जो यहाँ PWD कुल्लू में इंजीनियर थे। तो महाराज को उनसे प्रेम था, वो पाया जाने को उन्होंने सुना कि कुल्लू में एक मंदिर बना है तो वो भी वहां गए। तो कुल्लू के रहने वाले इसलिए वो भी वहाँ पहुँचे और उनका मिलन जब महाराज जी से हुआ तो वो बहुत ही प्रभावित हुए। तो उन्हें लगा कि ये बाबा फक्कड़ बाबा तो है ना, लेकिन ये फक्कड़ होते इतना मूल्यवान है, इतना अमूल्य है कि इसके इनका नाप इनका लेखा जोखा करना मेरे लिए जैसे बुद्धि बारी मैं हूँ ना, फिर भी मुझे मुश्किल पड़ा। उनको तो कोई अगर जान सकता है विजय बाबू कहते हैं तो केवल प्रेम से। उनका प्रेम इतना था कि उनके प्रेम में लिप्त किया एक छोटा सा बच्चा बनके रह गया। इसलिए उनका नाप जोख करना मेरे लिए कठिन हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है कि मैं 1965 में चंडीगढ़ से पढ़ाई करके कुल्लू आया और सरकारी नौकरी करने लगा। PWD में नौकरी करता था। उन्हीं दिनों कुल्लू में वाशिंग गांव के पास एक पहाड़ी नाले में एक महान तपस्वी योगी से मेरी भेंट हुई। योगी एकमात्र चद्दर में लिपटे हुए रहते थे तथा मंदिर के निर्माण कार्य में व्यस्त भी। जब भी कोई भक्त आता तो महाराज जी गुफा में जाकर स्टोव जलाते और आने वाले आगंतुकों को चाय पिलाते। मैं भी एक दिन अपने दोस्तों के साथ जाकर योगी जी से मिला। योगी अपना नाम लेकर अपने को बाबा कहकर संबोधित करते थे। मुझे देखकर वे एक क्षण के लिए मेरी ओर देखते ही रह गए। हम उनके पास बैठ गए। उन्होंने हमें गर्म गर्म चाय पिलाई और हमारा नाम पूछा। मैंने उन्हें अपना नाम विजय बताया। उस दिन से वे मुझे विजय बाबू कहकर पुकारते थे। एक दिन महाराज जी ने मुझे बताया कि विजय बाबू, एक दिन बाबा को 5 फनों वाला नाग देवता के दर्शन हुए। अब ये स्थान बहुत बड़ा बनेगा, यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। कुछ दिनों में ही शिव गुफा बनाई गई और शिवलिंग नागेश्वर महादेव की स्थापना करके एक विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ था। पर्वतीय तलहटी पर लगे उस मेले का आनंद कुछ और ही था। मुझे अनुभूत हुआ कि मैं कहीं देवलोक में किसी देवता के पास बैठा हूँ। उसी वर्ष शिवरात्रि को महादेवी दुर्गा की मूर्ति की स्थापना भी हुई। बाबा जी ने मुझे मेरे योग्य सेवा सौंपी और कहा, विजय बाबू आप आते हो और निर्माण कार्य में सहायता दो। मुझे जब ये दैवी कार्य करने का अवसर मिला तो मैं आनंद विभोर हो उठा। उन दिनों महादेवी तीर्थ के आसपास पत्थरों द्वारा चबूतरे बनाए जा रहे थे। बाबा जी स्वयं पत्थर तोड़ते और 2-4 मजदूरों के साथ सारा दिन भारी मेहनत करते थे। समय व्यतीत होता गया। 1970 में एक दिन बाबा जी ने कहा, विजय बाबू बाबा को वृंदावन जाना है, आप भी चलो और माता जी को भी साथ ले चलो। मैं अपनी माता जी और मित्र विश्वनाथ सूद को लेकर बाबा जी के साथ दिल्ली आया। हम यहाँ पहाड़गंज में सूद परिवार के घर ठहरे। ये सूद परिवार मेरी भाभी कृष्णलाल जी की पत्नी के बहन और जीजा जी थे। इन दिनों मेरी बड़ी बहन गीता जी, जिन्हें हम आज गीता माँ कहते हैं, वो दिल्ली सर्वांगी विकास संघ कुल्लू के साथ सम्मेलन में दिल्ली आई हुई थी। सम्मेलन हिंदू महासभा में हो रहा था। सम्मेलन के अंतिम दिन बाबा जी ने कहा, विजय बाबू जाओ हिंदू महासभा से माता जी को, मतलब गीता बहन को ले आओ। दूसरे दिन बाबा जी मैं उनके कहने अनुसार विश्वनाथ को लेकर टैक्सी द्वारा वहाँ हिंदू महासभा में पहुंचा और वहाँ बाहर खड़े टीएन चपरासी को कहा कि हमें गीता बहन से मिलना है। वो भीतर गया। उसने वहाँ सर्वांगी विकास संघ के जो महान बड़े इंचार्ज या महात्मा थे उनसे कहा, तो उन्होंने गीता बहन जी को कहा, जाओ आपके भाई आए हैं और आज अंतिम दिन है और उसमें उनको एक इनाम भी दिए जा रहे थे। तो फिर गीता बहन जी बाहर आए और मैंने कहा, बहन जी स्वामी जी आए हैं, माता जी भी आई हैं और हम सब पहाड़गंज में उनके घर में सूत जी के घर में ठहरे हैं। तो मैं वो भी गीता बहन जी भी टैक्सी में बैठ गई और हम सब पहाड़गंज आ गए। पहाड़गंज में वो सूत परिवार और बहुत ही नेक था। उनके 2 लड़के, 1 लड़की और स्वयं पति पत्नी बड़े ही सेवक थे। सूत जी ने, घर के स्वामी ने हमें एक कमरा दे दिया और महाराज जी को दूसरा कमरा और स्वयं उन्होंने महाराज जी के चरण धोए। हालांकि वो राधा स्वामी के मत में दाखिल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने श्री महाराज जी के स्वयं अपने हाथों द्वारा प्रात मंगाकर चरण धोए और महाराज जी को सुनाया और अच्छे से उनकी सेवा की। दूसरे दिन बाबा जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि चलो विजय बाबू अब हम आपको वृंदावन दिखाते हैं। अच्छा, दूसरे दिन बाबा जी मेरे माता जी, गीता बहन जी, विश्वनाथ जी तथा मैं, हम सब वृंदावन गए। रास्ते में हमने ताजमहल के दर्शन किए। वृंदावन में हम भक्त नरूला जी के घर ठहरे। प्रतिदिन बाबा जी हमें वृंदावन के मंदिरों के दर्शनों के लिए भी ले जाते थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा जी बैठ जाते और माता जी, गीता बहन जी और विश्वनाथ जी दर्शनों के लिए भीतर जाते, पर मैं भी बाबा जी के साथ नहीं बैठ जाता जहाँ बाबा जी बैठ जाते थे। मुझे भीतर जाकर मूर्तियों के दर्शन करने के स्थान पर बाबा जी से बातचीत करने में अत्यधिक आनंद आता था। मैं सोचता था कि मेरे साथ साक्षात भगवान है, तो मैं उन पत्थर की मूर्तियों के पास जाकर क्या करूं। बाबा जी कई बार कहते भी, विजय बाबू आप भी जाओ, तो मैं हंस के कह देता, स्वामी जी मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, मुझे आपसे बहुत कुछ मिलता है, मुझे तो आप बाबा जी स्वयं परम पिता परमात्मा ही लगते हैं, और आप है ही परम पिता परमात्मा। इस तरह हमारी आपस में बातचीत होती रहती। बाबा जी भी मुझे बहुत प्यार करते और मैं बाबा जी को भी अपने इष्ट देव के रूप में देखता था। वृंदावन से वापस आकर, हाँ, एक और ऐसा अद्भुत प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि वृंदावन में हम भक्त नरूला जी के घर में ठहरे थे और स्वयं खाना बना करके खाते थे। एक दिन बाबा जी ने कहा, माता जी सुबह विजय बाबू और माता जी सब सुबह 3 बजे उठ जाना, स्नान करके चल पड़ना बाबा के साथ, और हमें वहाँ मधुबन में जाना है। तो बाबा जी आगे आगे और हम सब पीछे पीछे, माता जी थोड़ी देर हैं उम्र की, फिर भी माता जी हमारे साथ तेजी तेजी से चलती रही और बाबा जी हमें मधुबन ले गए। वहाँ पर सबसे प्रथम हम ही पहुँचे और हम, बाबा जी ने कहा, विजय बाबू यहाँ दरवाजे के साथ सट के बैठ जाओ। हम सारे ही वहाँ लाइन में बैठ गए कि अभी किवाड़ खुलेंगे तो दर्शन करना। तो हम बैठे थे तो उतने में ही वृंदावन की कई महिलाएं, गोपियां या पुरुष, बहुत से लोग आने लग पड़े और लाइन में बैठने लग पड़े। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही भीड़ आगे बढ़ी। हमने भी, मैंने भी, विजय बाबू कहते हैं, मैंने भी झांक कर देखा तो सचमुच ही जैसा कि कहा जाता है कि वहाँ भगवान आते हैं, रात को सोते हैं और सुबह दर्शन करके चले जाते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा देखा वहाँ पे अद्भुत नजारा, और मैंने अपने मन में उस नजारे को संजो लिया और मैं फिर माता जी को, गीता बहन जी को लेकर बाबा जी के साथ चलने लगा। इस तरह कई स्थानों पर वृंदावन में स्वामी जी ने कुछ नई नई लीला भी की, जिससे मुझे और ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं ये ठीक है, ये भगवान ही है, हमारे लिए आए हैं, कुल्लू का भला करने के लिए आए हैं, देश का भला करने के लिए आए हैं। इन विचारों के साथ में उनके साथ चलता रहा। आखिर वृंदावन पूरा देखने के पश्चात हम वापस कुल्लू आ गए और मैं अपने दफ्तर के कार्य में लग गया और तथा बाबा जी मंदिर निर्माण कार्य में जुट गए। एक दिन बाबा जी व्यास नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने कहा, विजय बाबू यहाँ अन्न क्षेत्र बनेगा। ये सुनकर मैं सोचने लगा, भला कैसे, एक वो सड़क है और दूसरे साथ ही नदी भी बह रही है, खाली स्थान तो है ही नहीं। लेकिन जब मैंने ये सोचा और फिर बाबा जी से प्रश्न भी किया तो बाबा जी ने कहा, देखो विजय बाबू देखते हो क्या होगा और कैसे ये बनेगा, देखते रहना। उतने में बाबा जी ने क्या किया, ये नदी के किनारे सड़क के साथ पत्थर डाल डाल कर चबूतरा बनाया। उन्हीं दिनों पत्थर की कमी हो गई, कुछ 2 कुली लगाए थे उन्होंने, स्वयं भी वो सारा दिन पत्थर वहाँ डालते रहते थे, जिससे नदी आगे चलती गई, स्थान में गुच गुटा बनता गया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब पत्थर कम हो गए तो बाबा जी ने एक ठेकेदार को बुला करके वो ठेका दे दिया कि आप इसको भर दो सड़क के साथ साथ ले आओ। लेकिन ठेकेदार ने भी बड़ी कोशिश की, उससे भी वो चबूतरा नहीं बन पाया, इतने पत्थर नहीं मिले कि उस चबूतरे को भरा जाए। आखिर वो भी चला गया तो महाराज जी बाबा जी मेरे से कहते, विजय बाबू अब क्या होगा। तो मैं भी हैरान था, क्या करें, कैसे इस चबूतरे को भरें, कैसे फिर उसके ऊपर एक बड़ा हॉल बनाएं जिसमें कि बहुत से लोग इकट्ठे बैठकर भोजन पाए, अनुक्षेत्र का निर्माण कैसे होगा। लेकिन अचानक ही बरसात आई, बरसात के दिनों में साथ मंदिर के साथ वाला नाला इतनी बहाव में आया कि वो हजारों पत्थर अपने साथ ले आया। यह अगस्त का महीना था और जब मैं मंदिर गया तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, विजय बाबू देखो देखो माता का चमत्कार। माता ने स्वयं ही इतने पत्थर दे दिए और दो चार कूली लगाकर बाबा जी ने वो सारे पत्थर उस चबूतरे के बीच में डाल दिए जो बनाया जा रहा था, और चबूतरे का लेवल जो था वो सड़क तक आ पहुंचा। और ऐसी चबूतरे पर बाबा जी ने दीवारें खड़ी की, आसपास दीवारें खड़ी की। अब सवाल आया कि इसको छत के कहाँ से डाली जाए, पैसा तो एक नहीं है, बाबा जी कहते। तो फिर मैंने और एक दो ने विचार किया कि क्यों ना हम कहीं अखाड़ा बाजार में जाकर किसी भक्त को कहें जिसके पास चादरें होती हैं, तो वहाँ जा करके हमने कुछ चादरें इकट्ठी की, कुछ लोगों ने पैसा दिया, कुछ कैसे कैसे करके वो चादरें लाई और उस भंडारे के ऊपर डाल दी। और बाबा जी स्वयं वहाँ प्रथम दिन ही भोजन पकाने बैठ गए, उन्होंने स्वयं खिचड़ी बनाई और लोगों को खिलाई। तो मुझे फिर मेरा विश्वास और पक्का हो गया, देखो बाबा जी को हैं जो बोलते हैं वो हो जाता है, कुदरत भी इनका साथ देती है। कहते हैं योगी को कुदरत बहुत साथ देती है, क्योंकि योगी का मिलन, योगी की आत्मा भगवान से मिल चुके परमात्मा समान हो जाती है, और कुदरत जो है वो तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर एक दासी की तरह खड़ी रहती है कि बोलिए भगवान बोलिए, क्या चाहिए क्या चाहिए। तो इसी तरह से योगी जो है, भगवान का भक्त जो है, जिसे भगवान मिल चुके हैं, उनकी सारी इच्छाएं वो नेचर कुदरत जो है पूरा करती रहती है। तो इसी तरह से मैं बाबा जी के बारे में सोचता हूँ कि देखो ये कितने बड़े योगी हैं, शरीर भी इनका योग द्वारा सदा हुआ है, मन भी सदा हुआ है, और साथ भगवान इनकी हर इच्छा को पूरी भी कर देते हैं। सन 1986 में मैं एक बाबा जी की कुटिया में आया, बाबा जी अकेले बैठे थे, मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। हाँ, इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारी बहन गीता बहन घर छोड़कर 1976 में नौकरी छोड़कर एकाएक बिना बताए वैष्णो देवी से जम्मू से कटरा से सीधे बाबा जी के वहाँ चली आई थी, तो मुझे बहुत रोष हुआ था। और बाबा जी के प्रति तो मुझे इतना रोष नहीं हुआ, मैं जानता था बाबा जी कितने महान हैं, वो भगवान हैं, लेकिन मुझे अपनी बहन पर बहुत दुख भी हुआ, रोष भी आया, क्योंकि अब वो क्या करेगी यहाँ बैठकर इतना बड़ा घर नौकरी छोड़ करके। तो मैं जब कभी बाबा जी के पास जाता तो बाबा जी मुझे काम बताते, विजय बाबू ये डंगा देना, इसकी नपाई करो, ये संगमरमर है इसको नापो, हमें कितना पैसा बना, मिस्त्री को कितना देना है, मतलब कंस्ट्रक्शन का कार्य मेरे ही द्वारा वो करवाते थे। लेकिन मैं कभी अपनी बहन के पास छोटी कुटिया में जहाँ गीता बहन जी रहते थे नहीं जाता था, और बाबा जी के पास बैठकर भी नीचे धोने के पास बैठकर उनका कार्य करके वापस घर आ जाता था। और घर में माता जी जब रोते थे कि वो चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई, तो मैं कहता माता जी देखो आप ना रोती हूँ, जब वो चली गई उसको हमारे प्रति कोई मोह नहीं है तो हमें उसके प्रति क्यों मोह रखे, क्यों आप ऐसा करती हो। तो उस समय मैंने ये बात को नहीं समझ पाया था कि बाबा जी ने बहन जी ने क्या दर्शन किए, उनको क्या मानते थे वो। तो इस तरह से मेरा जीवन चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गई कि बाबा जी तो बहन जी को भगवती मानते हैं। और फिर क्या हुआ कि जब मैं बाबा जी के एक दिन उनके पास जाकर बैठा, उन्हें प्रणाम किया, तो बाबा जी ने मेरी वो स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, विजय बाबू अब बाबा इस दुनिया से चला जाएगा। ये 1986 की बात है। मैंने कहा, बाबा जी हमने भी तो चले जाना है, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा उसका था कि कोई भी प्रसंग आए तो मैं उसमें उसे हंसी में टाल देता था। तो मैंने कहा कि बाबा जी हमने भी तो चले जाना है। ये सुनकर बाबा जी ने कहा, हे विजय बाबू, बाबा निराकार रूप में यही रहेगा और लोगों ने मंदिर में आप लोगों ने मंदिर में आकर खड़ा ही होना है। ये मत समझना कि बाबा मर जाएगा, बाबा नहीं मरेगा, बाबा अगर अमर है और निराकार रूप में बाबा मंदिर में ही रहेगा। आपकी ड्यूटी है कि आप मंदिर में आके खड़े हो जाओ, माता जी का ध्यान रखो, मंदिर का ध्यान रखो और अच्छे से जो कार्य आपको दिया गया है विजय बाबू वो हमेशा करते रहना। भविष्य में यहाँ एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण होगा जिसके लिए आपको बहुत कुछ काम करना होगा, इसलिए आपने ये नहीं कहना कि हम सब ने ही जाना है, बाबा जाएगा, आपको तो अभी संसार के बहुत से कार्य करने हैं और आप खड़े ही हो जाओ, ये बड़ी बात है, शेष बाबा सब देख लेगा। और इसी तरह मेरा जीवन उनके साथ 1985 से लेकर 1987 तक बड़े प्यार से व्यतीत होता गया। जब मैं कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ता था टेक्निकल एजुकेशन में, तो उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मुझे अपने पिताजी के पास ज्यादा मौका नहीं मिला था बैठने का, बातचीत करने का। तो मैं उनसे बहुत बाबा जी से बहुत ही प्यार लेता था और उनके पास बैठकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब देखिए 13 दिसंबर को बाबा जी ने जीवन समाधि ले ली। उस दिन मेरी आंखों से अविरल आंसू बहते रहे, जब भी मैं इससे पहले शायद ही रोया होगा। फिर मैंने बाबा जी जो बाबा जी ने मुझे कंस्ट्रक्शन का धर्मशाला के निर्माण का कार्य दिया था वो उस भार को मैंने संभाला। 1991 में बाबा जी की मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए कार्यकर्मी ने मेरी ही ड्यूटी लगाई। बहन जी श्री गीता मां जी के साथ मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी किरण सूद, बेटी शालिना और बेटा सचिन और राम शीतल जी सब हम जयपुर को रवाना हुए। उन दिनों खाड़ी युद्ध छिड़ा हुआ था इसलिए पेट्रोल की कमी थी। हम बस द्वारा दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से जयपुर भी हम बस द्वारा ही गए। हम मूर्तियां बनाने वाले बाजार में इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि हम पहली बार गए थे। इससे पहले महाराज जी, स्वामी जी, स्वयं बाबा जी जाते थे, मूर्तियों का ऑर्डर देते थे, बनवा कर ले आते थे। मैं भी, शीतल जी भी कभी उनके साथ नहीं गए थे, लेकिन गीता बहन जी ने बताया, माता जी ने बताया कि मैं पहले महाराज जी के साथ 1972 में आई हूँ और यहाँ विराट जो मूर्ति है उसको बनवाया था। तो हम गीता बहन जी के कहने से ढूंढने लगे उस व्यक्ति को जिसने वो विराट की मूर्ति बनाई थी। फिर हम सारे बाजार में घूमते रहे लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस दुकान में जाकर ऑर्डर दें। और गीता बहन जी को भी काफी समय हो गया था 1972 के बाद, आज फिर 1988 में ये काम हम कर रहे थे। तो उस समय जब हम इधर उधर घूम रहे थे और सायकाल भी सामने आ रही थी, उसी समय बाबा जी की कृपा से एक दुकानदार ने हमें देखकर अपनी दुकान में बुलाया। हमने जाकर दुकानदार को मूर्ति बनाने की बात बताई और श्रीमान जी ने बाबा जी के सारे फोटो मूर्तिकार के आगे रखते हुए कहा, देखिए बहुत सुंदर मूर्ति बनाना। दुकानदार ने पूछा, कितना पैसा लगाओगी। लगाओ। ये श्री माँ जी ने कहा 17,000, क्योंकि कमेटी के फैसले के अनुसार 17,000 की रकम का ही निश्चय हुआ था। दुकानदार ने श्री माँ गीता की ओर देखते हुए कहा, ठीक है तो सुंदर अति सुंदर मूर्ति ही बनाऊंगा और ऑर्डर देकर हम खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, आप लोग कहाँ ठहरे हैं? तो हमने कहा, अभी हम आए हैं दिल्ली से, अभी तक कहीं नहीं ठहरे हैं, रात हो रही थी। तो उन्होंने कहा, आप हमारे घर चलिए, यहीं ठहरिए और वो हमें अपने घर लेंगे। और अच्छे से उन्होंने हमारा आव भाव किया ज्योतिकार ने, और हम फिर दूसरे दिन ऑर्डर देने के बाद वापिस आ गए। रास्ते में हम चंडीगढ़ ठहरे और फिर कुल्लू पहुँचे। 6 महीने बाद जुलाई 1991 में मेरे बड़े भाई कृष्णलाल सूद जी को एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये दिया ड्यूटी दी कि अब आप जाकर नियुक्ति लाओ, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, अपनी निजी गाड़ी थी उनके पास, तो इसलिए अब मेरे बड़े भाई कृष्णलाल जी ने ये कार्य संभाला। और गीता बहन जी, माता जी, मतलब गीता बहन जी और शायद नरेंद्र जी उनके साथ गए। जब ऑर्डर देना था तो मैं कमाल जी को साथ ले गया था, और जब मूर्ति बनानी थी, लानी थी, तो विवेक जी को साथ भेजा था, क्योंकि कमेटी ने इन दोनों को ऐसे ही ड्यूटी दी गई थी। तो जब मूर्ति आई मंदिर में, तो गीता बहन जी ने फोन किया, माता जी ने फोन किया कि आ जाओ, हम रात को 2 बजे पहुंच गए हैं। तो प्रातः काल हम सब मूर्ति के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे। तो माता जी ने मूर्ति के ऊपर एक सफेद चद्दर उठा रखी थी, वो उठाया तो देखते ही हमें लगा कि सचमुच ये तो स्वामी जी है, बाबा ही है। हमें नहीं लगा वो पत्थर की मूर्ति है, और हम देखते के देखते ही रह गए, हाँ वाह क्या मूर्ति बनी है। मुझे याद आया कि उस मूर्तिकार ने कहा था कि माता जी मूर्ति ऐसी ही सुंदर बनाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे। उसी समय बाबा जी का प्रिय भालू भी हमारे साथ बैठा हुआ था, और जैसे ही कपड़ा को हटाया तो भालू भी खड़ा हो गया और झट से उठा और स्वामी जी की मूर्ति को सूंघा और चाटा अच्छे से, और बड़ा खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। उसी समय श्री रामलाल सूद जी मेरे बड़े भाई कहने लगे, देखो हम सब यहाँ खड़े हैं और आप तो कह रहे हैं कि मूर्ति कैसी बनी। वहाँ शायद राजन आचार्य उस वक्त खड़े थे, तो उन्होंने कहा बार बार बात तो ठीक है, कुछ कान में फर्क है। तो उसी समय जब भालू ने चाटा तो रामलाल जी ने कहा, देखिए हम मनुष्य होकर के कोई ना कोई डिफेक्ट निकालते हैं, लेकिन ये भालू तो बिल्कुल समझ गया कि ये स्वामी जी आए हैं, जो उसने इतने प्यार से स्वामी जी को सूंघा और अच्छे से उनको चाटा और पूंछ हिलाई। तो ये देखने की बात है, समझने की बात है कि जानवरों की आत्मा कितनी निर्मल होती है। और एक घड़ी उसने ये हमें दिशा दिया कि तुम्हें पत्थर दिखाई देता है, पर मुझे तो अपने बाबा जी ही दिखाई देते हैं। अब 1992 के पश्चात एक्यूप्रेशर का केंद्र विवेक जी द्वारा मंदिर में खोला गया, और साथ ही साथ मंदिर में धर्मशाला का काम भी चलता रहा। उन दिनों विवेक जी एक्यूप्रेशर में अधिक व्यस्त रहते थे, इसलिए कार्यकारिणी ने मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं सारा दिन वहाँ खड़ा रहूं। इसलिए कार्यकारिणी ने वहाँ की मंदिर निर्माण का कार्य देखने का कार्यभार कमाल दास जी को सौंप दिया, और मैं सुबह शाम जब भी मुझे फोन आता मैं जाता, और कुमार जी को या मिस्त्रियों को सब किस्म का जो कार्य करना था बता करके आ जाता। मेरे मार्गदर्शन लेकर कुमार जी सारा दिन या जब भी काम होता वो करते रहते। मेरी देख रेख में शिव गुफा का पुनः निर्माण, तीन देवियों के मंदिर, बाबा जी की समाधि, विवेक जी की समाधि का निर्माण कुमार जी ने करवाया। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं महाराज जी के उन कार्यों को जो वो चाहते थे जैसा चाहते थे मैं जीवन पर्यंत करता ही रहा। मेरे जीवन में एक ही महायोगी वैष्णो देवी के बाबा की शरण लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरे सुख दुख के भागीदार बाबा जी मुझे मेरे कर्म योग को पूर्ण तथा निर्लेप रहकर निभाने की कृपा सदैव करते थे। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं उनको बारंबार नमस्कार करते हुए आप सबको फिर से ये बताना चाहूँगा कि बाबा जी एक अद्भुत योगी थे, जिनको जानना, जिनको पहचानना भगवत कृपा से ही हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ विजय सूद जय ती बाबा जी कह करके इस लेख को बंद करता हूँ। जय माता दी, गीता माँ।